Hey everyone, I am Shivani Singhi, digital creator, podcaster, founder of Mapreneur and your host. आज हम बात करेंगे एक बार फिर से PCOS, infertility के बारे में. इसका क्या रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कुछ वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है. और जहां तक मुझे लगता है आजकल की लाइफस्टाइल में ज्यादातर वुमेन्स को हार्मोनल चेंजेस के कारण ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है. सो हमारे साथ डॉक्टर राजेश सोनी, वो अपने बारे में बताएंगे कि उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने अभी तक कितने लोगों को रिकवर किया है, कितने लोगों को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से ठीक किया है. वेलकम टू द शो सर, वेलकम है आपका हमारे शो में. प्लीज आप आपके बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को बताएं.
हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश सोनी है. मैं ये PCOS और PCOD और इनफर्टिलिटी के लिए 2007 से मैं रिसर्च कर रहा था, और 7 साल रिसर्च करने के बाद 2014 में मैंने इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स किया. आई हैड डन माय डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन फ्रॉम USA. सो जो इन्वेंशन जो मैंने किया है that is completely innovative invention. It is not belongs to the naturopathy. It is on my own research. और 2014 से ये जो ट्रीटमेंट जो इन्वेंट किया हुआ है मैंने, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ. और अभी तक मोर देन 10,000 लेडीज को मैंने क्योर किया हुआ है PCOS और PCOD के लिए.
वेरी नाइस सर. सो सर, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगी जो बहुत सारी वुमेन्स है जो फेस करती हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. PCOS, PCOD, इनफर्टिलिटी कि इसके सिम्टम्स क्या है, ये किस रीजन से होता है, और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, उन सवालों को मैं आपसे पूछूंगी. सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि PCOS क्या है, ये किस रीजन से होता है, और जो पहले के लोग थे उनमें इसका रेशियो कितना था, और अभी के लोगों में इसका रेशियो कितना है. आपने इतना साल रिसर्च किया है इसके ऊपर, नेचुरल वे से आपने इसे ट्रीट करने का कोशिश किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, PCOS और PCOD जो चीज है बेसिकली, वो आजकल जो हो रहा है काफी सालों से हो रहा है. और अर्लियर जैसे आपका पेरेंट्स वगैरह था उस वक्त ये चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और ये नया चीज़ आया हुआ है जो PCOS और PCOD के नाम से जाना जाता है. PCOS और PCOD होने का दो रीजन्स है. एक तो एनवायरनमेंट टॉक्सिन्स जो पोल्यूशन वगैरह होता है उसकी वजह से होता है, एंड सेकंड थिंग्स काफ़ी तरह का आजकल दुनिया के अंदर स्ट्रेस वगैरह होता है. हर एक की लाइफ में डिफरेंट स्ट्रेस होता है. जब कोई भी फीमेल को कोई भी तरह का टेंशन और स्ट्रेस होता है और अपनी बात किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं और उनका माइंड 24 आवर्स चलता रहता है, तभी इसका इफेक्ट हॉर्मोन्स के ऊपर होता है. और जब हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट होने के बाद इनिशियली क्या होता है कि उनको इरेगुलर पीरियड्स होता है. इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है जो गर्ल्स 10th ग्रेड और 12th ग्रेड में पढ़ाई करती है, उनको क्या होता है कि उनको अच्छे परसेंटेज चाहिए, उसके लिए वो सोचते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं. वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा. अगर एडमिशन भी मिल गया, उसके बाद जब कभी हॉस्टल में जाते हैं रहने के लिए, आउट ऑफ टाउन जाते हैं रहने के लिए, तो उधर भी उनको एनवायरनमेंट अच्छी तरह से नहीं मिलता है और उनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है. और वो जो प्रॉब्लम होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये भी एक तरह का टेंशन और स्ट्रेस ही है. जो लड़की पढ़ाई करने के बाद वर्क करते हैं तो वर्क रिलेटेड भी काफ़ी तरह का टेंशन और स्ट्रेस होता है. काफ़ी कुछ टारगेट दिया जाता है आजकल कि आपको इतना काम करना है, ये करना है, वो करना है. पर प्रेस से वापस घर पे आने के बाद भी माइंड के अंदर वर्क के लिए रिलेटेडली चलता रहता है, सोचना चलता रहता है बेसिकली
जी.
उसके बाद क्या होता है, जब शादी होती है तो शादी होने से पहले भी काफ़ी लेडीज लोग को प्रॉब्लम होता है. वो सोचते रहते कि मेरे को कैसा रिश्ता मिलेगा, उस तरह का भी एक टेंशन और स्ट्रेस रहता है. मैरिज करने के बाद काफ़ी बार ऐसा भी मिला हुआ है, देखा गया हुआ है कि उनको अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है. कभी मदर इन लॉ का प्रॉब्लम होता है, कभी फादर इन लॉ का प्रॉब्लम होता है, कभी हस्बैंड का भी कुछ प्रॉब्लम होता है. और अपने को शादी होने के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है वो पेरेंट्स को नहीं बताते. इसलिए नहीं बताते कि लड़की लोग को क्या होता है कि मैरिज करने के बाद कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स को नहीं बताने का रीज़न एक ही है कि वो लोग पेरेंट्स को स्ट्रेस करना नहीं चाहते हैं. दूसरा बात, आजकल जो दुनिया है, अगर आप देखा जाए तो आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हो, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, अपना 100% आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। जब आप अपनी जो प्रॉब्लम है आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, और उसके बारे में जब आप सोचा करते हो और आपका माइंड चलता रहता है, उसी वजह से इसका इफेक्ट सबसे पहले हॉर्मोन्स के ऊपर आता है। हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट आने के बाद क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो पीरियड्स वगैरह जो है इरेगुलर पीरियड्स आता है। कभी आपका पीरियड्स एक महीने से ज़्यादा डिले हो गया है, डेढ़ महीना हो गया, तो कोई भी फीमेल्स जो है वो रुक नहीं पाती अपने आप को, वो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं या मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं और बताते हैं कि मेरा पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। इसलिए क्या होता है कि बेसिकली विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ द टेस्ट, कोई भी तरह का टेस्ट या कुछ भी करने से पहले दवाई चालू हो जाता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च इसलिए मैंने चालू किया है कि इसके लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के अंदर कोई भी तरह का मेडिसिन नहीं है। जब तक पेशेंट मेडिसिन लेता रहता है तब तक सब सही रहता है, और जैसे आप दवाई बंद कर देते हैं बाद में वही प्रॉब्लम चालू हो जाता है, और ये चीज़ पेशेंट को किसी को मालूम नहीं होता है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको दवाई दे देते हैं, और जब तक दवाई लेते हैं तब तक सही रहता है, और दवाई का साइड इफेक्ट से क्या होता है कि आपका वेट गेन होना चालू होता है। वेट गेन चालू होएगा, उसके साथ साथ आपका मूड स्विंग्स चालू होएगा, आपको गुस्सा आना लगेगा, और आप गुस्सा करने के बाद 15-20 मिनट के बाद आपको खुद को लगेगा कि मैंने ये गुस्सा क्यों किया, मेरे को ये गुस्सा नहीं करना था, और आप लोग शायद गिल्टी भी फील करते होगे उसके बाद। दूसरे बात क्या होता है कि आप जो भी काम करते हो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन या ध्यान से आप काम नहीं कर पाते होगे, उसके साथ साथ आपको भूलने की भी बीमारी चालू हो जाती है, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी कभी अकेले बैठ के रोने का दिल भी आ जाता है। फेशियल हेयर होता है, हेयर फॉल होता है, वेट गेन होता है, वजन कमती करने की कोशिश करते हैं तो वजन कमती नहीं होता है। दूसरा बात, आप जब डॉक्टर के पास जाओगे आपका की शिकायत करोगे कि मेरे को इरेगुलर पीरियड्स है, और दवाई दार चालू करने के बाद आपका वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको ऐसा बोलते हैं कि आप वजन कमती करो। अभी जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया हुआ है और आप कितना भी कोशिश करोगे आपका वजन कमती नहीं होएगा, और जब आप को जब डॉक्टर बताते हैं कि आप 10 किलो वेट लॉस करो या 5 किलो वजन उतारो, आप ऐसा सोचो कि हाँ डॉक्टर ने मेरे को बताया हुआ है 5 किलो 10 किलो वजन उतारना है मेरे को, तो आप कोशिश करते रहोगे, और कोशिश करने के बाद सब कुछ चीज़ करने के बाद आप डाइट करोगे, जिम जाओगे, वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तब आपको लगता है कि मैं सब कुछ कोशिश कर रही हूँ मेरे से वेट लॉस नहीं होता है। जब ऐसा होता है तब आपके माइंड के अंदर एडिशनल स्ट्रेस और एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके माइंड में चला जाता है, कभी मैं क्या करूं, और उसी वजह से आपका जो हॉर्मोन्स है वो अच्छे होने की जगह पे और डिस्टर्ब होने चालू हो जाता है। और डॉक्टर क्या करते हैं बेसिकली, सबका हॉर्मोन्स का टेस्ट करवाना सबसे पहले ज़रूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी दवाई लेने से पहले आप लोग का अपना हॉर्मोन्स का टेस्ट करवाना ज़रूरी है, और हॉर्मोन्स का टेस्ट करने के बाद ही आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपका हॉर्मोन्स कितना डिस्टर्ब हो गया हुआ है, उसके बाद ही कोई तरह का मेडिसिन लीजिए। अगर आप लोग कोई भी डॉक्टर के पास दवाई वगैरह लेते हो, कुछ भी करते हो, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका हॉर्मोन्स का लेवल आपका क्या है आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक साल से भी दवाई ले रही हूँ, 6 महीने से भी दवाई ले रही हूँ, तो मेरे को चेंजेस नहीं मिल रहा है, तो आप खुद भी हॉर्मोन्स का टेस्ट रिपीट करवा सकते हो। और हॉर्मोन्स का टेस्ट रिपीट कराने के बाद आप अगर गूगल पे भी देखोगे तो गूगल पे भी मालूम पड़ेगा आपका कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, पहले मेरा हॉर्मोन्स कितना था, बाद में मेरा हॉर्मोन्स कितना है। लेकिन आजकल एजुकेटेड पर्सन भी, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब एजुकेटेड है, सब कुछ मालूम है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा सोच नहीं आता है कि हम लोग खुद भी हॉर्मोन्स का टेस्ट करवा लेते हैं। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक हमको हॉर्मोन्स का टेस्ट नहीं करना है। सेकंड थिंग, जब आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका शायद इनिशियली काफ़ी तरह का नंबर ऑफ टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद आपका क्या करते हैं कि सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी का रिपोर्ट ही आपका रिपीट करते जाएंगे। अभी सोनोग्राफी का रिपोर्ट कोई भी पेशेंट को अच्छी तरह से देखने का मालूम नहीं है, जो डॉक्टर आपको बताते हैं उसको बिलीव करना पड़ता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इंडिया के अंदर आपको इनिशियली ये प्रॉब्लम होता है, और आप जब सोनोग्राफी करवाते हो तो सोनोग्राफी करने के बाद डायग्नोस सेंटर वाले ही आपको बता देते हैं कि आपको सीस्ट है, और सीस्ट होने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको PCOS और PCOD है। एक्चुअली सीस्ट या सोनोग्राफी रिपोर्ट से कभी भी मालूम नहीं पड़ता है कि आपको PCOS या PCOD है। पीसीओएस और पीसीओडी है कि नहीं है उसके जानने के लिए दो तरह का हॉर्मोन्स का टेस्ट होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीसरे दिन होता है, जिसका नाम है एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच का रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको कोई भी चीज़ बता सकते हैं कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम है। हम मेरी तरफ से मैं अगर बताऊं तो दोनों एक ही चीज़ है पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। ओनली क्या डिफरेंस है कि जब भी एलएच का वैल्यू एफएसएच के वैल्यू से ज़्यादा है तब उसको पीसीओएस बोला जाता है, अगर एफएसएच का वैल्यू आपका एलएच से ज़्यादा है तो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। दोनों का सिम्टम्स सब कुछ एक ही जैसा है, और जिसको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है या पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आइधर आपका वजन ज़्यादा होता रहेगा आइधर आपका वेट बढ़ेगा नहीं, तो उसमें आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें दो तरह का पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। और एक तो रेगुलर जो पीसीओएस होता है जिसका वेट बढ़ जाता है, और दूसरा जो होता है जो पतले लोग होते हैं उसको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। तो ये जब सिम्टम्स जब होता है, सभी सिम्टम्स होता है, और मैं जब भी मेरा पेशेंट के सामने देखता हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सिम्टम्स चेक करता हूँ कि उनको क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स देखने के बाद मैं पर्टिकुलरली एएमएच का टेस्ट करवाता हूँ जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स। दूसरा टेस्ट होता है टीएसएच जो थायराइड के लिए है, और जिसको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है उसमें से 90% लोग को टीएसएच का प्रॉब्लम होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तीसरा चीज फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट होता है, जिसका वेट ज़्यादा है जिसका स्टमक थोड़ा सा भी बाहर है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है कि नहीं वो जानने के लिए फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करना जरूरी है। जो पेशेंट जो फीमेल्स पतली है जिसका स्टमक नहीं है और जो थिन पीसीओएस का पेशेंट है उनको फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करना जरूरी नहीं है। जब आप एएमएच का टेस्ट करोगे तब आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि आपका हॉर्मोन्स का क्या डिस्टर्बेंस है। एएमएच का रिपोर्ट जो होता है वो दो तरह के यूज करते हैं हम लोग देखने के लिए, एक तो हॉर्मोन्स आपका कितना डिस्टर्ब है उसको मालूम पड़ जाता है, दूसरा जो पेशेंट को कंसीव करने की कोशिश करते हैं फर्टिलिटी का इश्यू जिसको होता है कि उनको फर्टिलिटी होती है कि नहीं होती है वो भी वही टेस्ट से मालूम पड़ जाता है एएमएच टेस्ट के लिए। जब हम लोग को एएमएच टेस्ट को बैलेंस करना है तो उसके साथ साथ टीएसएच लेवल देखना जरूरी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है, और आजकल 90% लोग को विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, और विटामिन डी का टेस्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लोग हर पेशेंट को नहीं बोलते कि आप विटामिन डी का भी टेस्ट कीजिए। लेकिन हाँ, एएमएच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएसएच टेस्ट भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ओवर वेट है और आपका स्टमक थोड़ा सा भी बाहर है तो आप फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करवा सकते हो। ये चीज करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, और जब भी आपने कोई भी तरह का दवाई वगैरह लिया हुआ है, आइदर एलोपैथिक दवाई लिया है, आयुर्वेदिक दवाई लिया है, होम्योपैथी दवाई लिया हुआ है, और आप जब एएमएच का टेस्ट करवाओगे तब जब एएमएच का वैल्यू आपको 3.5 से ऊपर मिलता है तो उसको आपको डबल करना जरूरी है, क्योंकि एएमएच का टेस्ट एकदम सेंसिटिव टेस्ट होता है। जब आपने कोई भी तरह का दवाई दिया लिया हुआ है पिछले 2 साल में और आपने अगर आपने एएमएच का टेस्ट करवाओगे तो एएमएच का वैल्यू जो आएगा वो एक्चुअल वैल्यू से 50% आपको रिपोर्ट के अंदर दिखाएगा। काफ़ी पेशेंट का 90% पेशेंट का जो एएमएच वैल्यू होता है वो एकदम ज़्यादा होता है, और 10% पेशेंट जो होता है उसका एएमएच वैल्यू कम होता है। जिसका एएमएच वैल्यू 2.19 से कम होता है उसको पीसीओएस या पीसीओडी नहीं बोला जाता है, लेकिन उसको लो ओवेरियन रिजर्व बोला जाता है। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
तो सर, जैसे आपने अभी पीसीओएस के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि क्यों होता है, किस रीजन से होता है, और क्या ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, तो एक बार सबसे पहले आप मुझे इसका कुछ ऐसा प्रोसीजर बताएंगे कि पीसीओएस का टेस्ट कराने के लिए क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, और ऐसे क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं जो जब आप इस लाइफ में रहते हैं, इस फैमिली में रहते हैं, तो स्ट्रेस आना एक नॉर्मल चीज है, तो ऐसे कोई टूल्स और टेक्निक्स है जो इन चीजों को बहुत हद तक कम कर सकता है, और ऐसे क्या फूड्स हैं जो आपको खाने चाहिए, ये पीसीओएस का प्रॉब्लम में बहुत हेल्प मिलती है।
जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए एएमएच का टेस्ट है, टीएसएच का टेस्ट है, फास्टिंग ग्लूकोज का है, फास्टिंग इंसुलिन का है, अगर आप करवा सकते हो तो आप विटामिन डी का भी टेस्ट करवा सकते हो। ये सब जो टेस्ट है आप कभी भी करवा सकते हो, इसका जरूरत नहीं कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो पीरियड का 3rd डे करना है, जैसे आप लोग कभी शायद करवाए होंगे LH और FSH का टेस्ट, और आपको डॉक्टर बताते हैं कि पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन करने का होता है, तो ये जो AMH का टेस्ट है आप कभी भी करवा सकते हो। उसमें कोई भी रीज़न नहीं कि आप कोई भी दिन करवाओगे तो उसका रिजल्ट सही ही मिलेगा आपको। तो AMH का टेस्ट करना एकदम ज़रूरी है, और मैं AMH का टेस्ट करने के बाद बाकी का 3 टेस्ट इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि जब भी हम लोग को AMH को बैलेंस करना है तो बाकी का 2 चीज़ जो होता है कि TSH और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी हमको साथ में रिवर्स करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। जब तक हम लोग TSH लेवल नॉर्मल नहीं कर सकते और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स नहीं करते हैं, और विटामिन डी का डेफिशिएंसी अगर है तो अगर इसको बराबर नहीं करेगा तब तक AMH का लेवल जो है वो सही तरह से आएगा नहीं। दूसरा चीज़ जो आपका दूसरा जो क्वेश्चंस है इसके लिए क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी खाने की पीने की वजह से इस प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्चुअली आप सब कुछ चीज़ खा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि आप डाइट करोगे या वजन उतारने की कोशिश करोगे तो आपका हॉर्मोन्स सही हो जाएगा।
नो सर, मैं जंक फूड की बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल लोगों को बाहर का खाना
नहीं
और बहुत
नहीं
पसंद है, तो जैसे अगर
नहीं
वो कभी कभार भी खाते हैं तो भी क्या?
मैं हाँ देखिए, इसके लिए जंक फूड या बाहर का खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये जो है मिस है, लोगों ने बनाया हुआ है कि बाहर का खाना खाने से या जंक फूड खाने की वजह से आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोन डिस्टर्ब होने का एक ही रीजन है जो टेंशन एंड स्ट्रेस। दूसरा
ओके
जो रीजन है एनवायरनमेंट टॉक्सिंस। अभी एनवायरनमेंट टॉक्सिंस के अंदर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कोविड वगैरह चल रहा था, काफी लोग को मास्क लगाने में भी तकलीफ होती है, और हम
जी
एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट भी हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। तो जब एनवायरनमेंट टॉक्सिंस और पोल्यूशन होता है तो हम लोग अपना बॉडी को कभी भी कवर नहीं कर सकते, तो एनवायरनमेंट टॉक्सिंस के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है PCOS और PCOD होने का, जो और दूसरा रीजन जो है जो टेंशन और स्ट्रेस करते हैं उसको कंट्रोल करने में जरूरत है। खाना पीने से ये चीज के अंदर कोई भी नहीं होता है। काफी लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हाँ मैं वेट लॉस करूंगी तो मेरा हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाता है। जब आपका हॉर्मोन डिस्टर्ब होता है इसी वजह से आपका वेट गेन होता है। अगर आपको वेट लॉस करने से आपका हॉर्मोन्स कभी भी बैलेंस होने वाला नहीं है, और आपको जो डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि आप वजन उतारो वेट लॉस करो इसीलिए आपको बता रहा है क्योंकि आपका जब हार्मोन डिस्टर्ब होता है तब आपको वेट लॉस करने में बहुत ही तकलीफ आती है। तो इसीलिए मैं कभी मेरे पेशेंट को या मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप डाइट करो या जंक फूड खाना बंद करो। मैं तो यही बताऊंगा कि आप टेंशन और स्ट्रेस करो नहीं। और आपने जो मेरे को क्वेश्चन किया कि हाँ हर एक लाइफ के अंदर टेंशन और स्ट्रेस होता है, हाँ मैं एग्जैक्टली सबकी लाइफ के अंदर टेंशन और स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप टेंशन और स्ट्रेस करते हो तो आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होएगा। आपका
नहीं,
प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं होएगा। अगर हम लोग सोचेंगे टेंशन करेंगे स्ट्रेस करेंगे, किसी को फर्टिलिटी का इश्यू है, किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, अगर आप टेंशन और स्ट्रेस करोगे तो आपको कंसीव कभी भी होने वाला नहीं है। आप अगर पढ़ाई करते हो परसेंटेज लाना है तो टेंशन करने से पढ़ाई करने से स्ट्रेस करने से आपका परसेंटेज तो थोड़ा हाई होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला है आपका। दूसरा बात, अगर आप वर्क रिलेटेड स्ट्रेस करते हो तो वर्क रिलेटेड आप घर पे वापस आ जाते हो जॉब करने के बाद और आप उसका टेंशन करोगे घर पे आके, तो उसके अंदर कोई बेनिफिट है? नहीं बेनिफिट है। तो इससे अच्छा आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ डेफिनेटली आपको टेंशन या स्ट्रेस कुछ होता है, इस तरह का भी टेंशन और स्ट्रेस होता है कि मैरिज के बाद का कोई टेंशन है और हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम है या मदर इन लॉ का प्रॉब्लम है या फादर इन लॉ का कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप रिएक्ट मत किया करो। आप अगर रिएक्ट करोगे तब आप सोचने लगोगे, इसको आप
यस,
इग्नोर करना की कोशिश
इग्नोर,
कीजिए,
यस,
इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भगवान को मानते हैं, यू जस्ट टेक द नेम ऑफ द गॉड एंड
यस,
चेंज द नेम, ओके। अदर देन दैट मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मेडिटेशन कीजिए, आप
यस,
योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने फ्रेंड के साथ बात कीजिए, आप कुछ जो थॉट्स जो आता है जो सोच आती है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। वो चीज जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप दवाई लेते हो उससे अच्छा आप इतना भी करते हो आप, तभी भी आपको 90% बेनिफिट होएगा। सेकंड थिंग, आप पॉजिटिव सोचना सोचिए, कभी भी नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बता दिया आपको PCOS और PCOD है, क्या करते हैं फीमेल लोग, इमीडिएटली गूगल पे बैठते हैं और गूगल के ऊपर सर्फ करते हैं, और जब गूगल के ऊपर सर्फ करने के बाद मालूम पड़ता है कि इसके लिए तो क्योर ही नहीं है, जब क्योर नहीं है तब आपका माइंड ज़्यादा चलने लगेगा, आपको ओवेरियन कैंसर होएगा, वो होएगा, ये होएगा, काफ़ी चीज़ आपको गूगल पे मिलेगी, लेकिन ये सब चीज़ आप सोचते रहोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है आपको जो प्रॉब्लम है, फिर भी आप उसको ऐसा सोचो कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट थिंक पॉजिटिव, ट्राई टू ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज लाफ, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी।
बेसिकली ये सारी चीजें आप ही के ऊपर मैटर करती हैं,
आप ही के ऊपर मैटर करते हैं, आप कितना लेते हो आपके ऊपर। समझ गए आप? अगर आप ज्यादा ही सोचते रहोगे, ज्यादा ही करते रहोगे तो आपका हॉर्मोन ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, उसके अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है। और आपको ये चीज में दिमाग में से निकाल देना है कि आपकी लाइफस्टाइल और वेट लॉस ये दो चीज है ही नहीं बेसिकली। काफी लोग आपको ऐसा मिलेगा कहने वाले और गूगल के ऊपर भी कि लाइफस्टाइल डिसीज है या वेट लॉस करने से हो जाएगा, ये लाइफस्टाइल डिसीज है ही नहीं, ये बेसिकली जो है आपका टेंशन और स्ट्रेस का है। अगर आप अपनी बात किसी और से बात कर लो, किसी पे तो आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा, किसी को तो आप ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आपको। आप अपनी बात बता दो, अगर आप मैरिड वुमन है आपके हस्बैंड के साथ बात कर लो, अगर आपको रोना आता है आप रो लो, आप छोटी बेबी की तरह आप रो लो, लेकिन आप बोल दो। अगर आप बोल दोगे तो आपके माइंड के अंदर जो भी चीज है वो निकल जाएगा, यू विल फील रिलैक्स, आप अंदर से कुछ रहेगा आप। समझ गए आप? तो यही एक चीज जो है पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम करती है। और जब पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तब डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का इश्यू इसकी वजह से होता है।
ओके, ये मींस ये भी बहुत मैटर करता है।
एग्जैक्टली
इसके बारे में एक बार आप जरूर बताइए कि इनफर्टिलिटी क्या है, मींस जैसे बहुत सारे।
देखो जी जी, आपको इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट भी काफी है। कभी कभी क्या होता है कि आजकल पीसीओएस और पीसीओडी क्या है सबको मालूम नहीं है। जब किसी को बच्चे नहीं होता है तब उनको मालूम पड़ता है कि आपको हमको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन बेबीज नहीं होने की वजह से या कंसीव नहीं होने की वजह से खाली उनका फोकस होता है कि मेरे को इनफर्टिलिटी का ही प्रॉब्लम है। इंडिया की बात करते तो इंडिया के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। जैसे मैं 7 इयर्स के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, काफ़ी पेशेंट मेरे को मिलता है कि मेरे को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम इसी वजह से कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप एएमएच का टेस्ट करवाइए, एएमएच टेस्ट करने के बाद आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके ओवरी के अंदर कितना अमाउंट में एग्स बन रहे हैं। समझ गए? तब जब आपका एएमएच लेवल डिस्टर्ब है और अगर आपका एएमएच लेवल हाई है, उसका मतलब ऐसा है कि आपकी ओवरी में जितने अमाउंट में एग्स बनने चाहिए उससे काफ़ी गुना ज़्यादा एग्स बनने होते हैं, और ज़्यादा एग्स बनने की वजह से उसका साइज, क्वालिटी और हेल्थ बराबर नहीं होने की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। दूसरा बात, अगर आपका एएमएच लेवल डाउन है, जिसको हम लोग लो ओवरियन रिजर्व बोलते हैं, उसी में भी वही होता है कि जितने अमाउंट में एग चाहिए उससे कम मात्रा में अगर एग बन रहे हैं, तभी भी उसका साइज, क्वालिटी और हेल्थ बराबर नहीं होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। आपने काफ़ी बार, आप लोग ने देखा होगा काफ़ी इनफर्टिलिटी पेशेंट के अंदर कि उनको कभी कभी 2 महीने या 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आया होगा आप लोग को कि बेबी का ग्रोथ नहीं होता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज हो जाने का और बेबी का ग्रोथ नहीं होने का रीज़न एक ही है कि आपका जो एक क्वालिटी है वो बराबर नहीं है, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली। दूसरा बात, अगर आपको जब भी कंसीव करने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और आप जब थक जाते हो ट्रीटमेंट करके और मेडिसिन देने के बाद, और जब डॉक्टर को आपको लगता है कि हाँ अभी आपको तो कंसीव करने की ज़रूरत है, तब आपको डॉक्टर लोग 3 ऑप्शन बताएंगे आपको। एक तो आपको लेप्रोस्कोपी बताएंगे कि आप लेप्रोस्कोपी करवा दो, दूसरा बताएगा आप IUI करवा दो, तीसरा बताएगा आप IVF करवा दो। समझ गए आप?
जी सर, इनफर्टिलिटी के साइंस क्या है?
इनफर्टिलिटी का जो साइंस है वो वही साइन है जो आपको पीरियड रेगुलर नहीं आता है, आपको गुस्सा आता है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपका मूड बदल जाता है, आपको अकेले बैठ के रोने का दिल होता है, आपका वजन बढ़ जाता है। आप वजन कमती करने के लिए कोशिश करोगे तो वजन कमती नहीं होएगा, आपको शायद फेशियल हेयर भी होएगा, एक्ने होएगा, पिगमेंटेशन होएगा, इस हेयर फॉल होएगा, ये सब जो चीज है वो इनफर्टिलिटी का साइंस है।
ओके, और सर ये इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है ये किस एज में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं?
ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम कभी मालूम पड़ता है बेसिकली जब मैरिज हो जाने के बाद, जब कंसीव करने की कोशिश करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि मेरे को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स है। मैरिज करने से पहले जो प्रॉब्लम है, जो इरेगुलर पीरियड्स का, वो सब कुछ हार्मोन डिस्टर्बेंस होने की वजह से है, और काफी लोगों को इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है कि उनको पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आपको इनिशियली पीसीओएस और पीसीओडी का है, और शादी करने के बाद आपको जब कंसीव नहीं होता है तब आप उसको बताते हो कि आप उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है।
ओके, और सर जैसे इनफर्टिलिटी को क्योर करने की बारी आती है तो आपको क्या लगता है कि इसका एक्सपेंस कितना हो सकता है?
इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए अगर आप मेरे को पूछोगे तो इसके लिए कोई तरह का दवाई नहीं है। आप अगर दवाई लेते जाओगे तो आपका हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सपेंस की बात करता हूँ, आपका एक्सपेंस ही होता ही जाएगा, इसके अंदर क्यों क्योर ही नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको शिवानी जी।
ओके,
यू अंडरस्टूड, वो तो चलता ही रहेगा। एक्सपेंस जब पेशेंट थक जाएगा तब पेशेंट को बोला जाएगा आप लेप्रोस्कोपी कराओ, IUI कराओ, IVF कराओ।
लेकिन सर बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो IVF से बेबीज को जिन्होंने जन्म दिया है और अभी बहुत हैप्पी हैं।
देखिए IVF बेसिकली अगर आप मेरे को पूछते हो कि IVF किसके लिए है, जिसके AMH लेवल लो है, जिसका एक नहीं बन रहा है और लो ओवरियन रिजर्व है, जिसका एज 40 प्लस का है, उसके लिए IVF बेसिकली है।
ओके,
राइट। जो बाकी लोग हैं जो 21, 25, 30 इयर्स या 36 इयर्स की एज ग्रुप में जो है, उनको IVF करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। उनको जो होता है AMH को बैलेंस करने का है, और जो अमाउंट ऑफ एग जो बन रहे ज्यादा और कम बन रहा है उसको सही करने की जरूरत है। वो जब सही नहीं होता है उसकी वजह से डॉक्टर लोग बताते कि आप IVF करवाओ। अभी IVF के अंदर आपने जैसे बोला कि हाँ काफी हैप्पी पेशेंट है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IVF का सक्सेस रेट होता है 35-40% का, जो आपको जानने में मिलता है हर एक जगह से, ये 35-40% इसका सक्सेस रेट है। लेकिन 35-40% सक्सेस रेट के बाद आपको उसके बाद वाला फिगर्स या परसेंटेज कोई भी बताएगा नहीं। जो 35-40% सक्सेस रेट है उसमें से अगर आप देखोगे तो 70% को मिस कैरेज हो जाएगा विद इन 3 months ऑफ टाइम, 3 महीने के अंदर मिस कैरेज हो जाता है। और कोई भी IVF में आपको ऐसा बताएगा नहीं कि उनको मिस कैरेज होएगा। क्यों मिस कैरेज होता है? क्योंकि बहुत मुश्किल से IVF सक्सेस कर लिया है, और उसका जब एक का क्वालिटी साइज और हेल्थ बराबर नहीं होने की वजह से उनका जब ग्रोथ नहीं होता है, बेबी का ग्रोथ नहीं होता है, तब उसका मिस कैरेज हो जाता है 3rd month के अंदर।
ओके, तो मींस ये सभी लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
एग्जैक्टली, ये जानना जरूरी है सबके लिए, क्योंकि सब चीज आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी डॉक्टर लोग आपको लेप्रोस्कोपी करने के लिए बताएंगे। लेप्रोस्कोपी करने का मतलब ऐसा है कि आपकी ओवरी के अंदर जो सीस्ट है उसको निकालने के लिए लेप्रोस्कोपी किया जाता है, कि ओवरी के अंदर पंचर करके सीस्ट बाहर निकाला जाता है। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको सीस्ट क्यों होता है। सीस्ट इसीलिए होता है कि आपका जब हार्मोन डिस्टर्ब है तब आपको सीस्ट होएगा, राइट। अगर जब तक हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होगा तब तक तो सीस्ट होने वाला ही है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक फ्लावर पॉट है, उसके अंदर फ्लावर आते हैं, उसका रूट जिंदा है, उसका जो मूल है वो लाइव है, जिंदा है, और वो जो प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर आता है आप उसको पिक कर लेते हो, तो 4-5 दिन के बाद दोबारा भी फ्लावर आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको फ्लावर नहीं लाना है तो आपको रूट कट करना पड़ेगा, उसका मूल में से कट कर देना पड़ेगा, तब उसका फ्लावर नहीं आएगा। तो जो सीस्ट है वो एक फ्लावर जैसा चीज है। जब आपको सीस्ट निकाल दिया ओवरी के अंदर से, लेकिन आपका हॉर्मोन्स डिस्टर्ब है, जो रूट जिंदा है, तो आपको सीस्ट दोबारा होने वाला ही है। वो 3 महीने के अंदर दोबारा आपका सीस्ट होने वाला है। और आप कभी भी लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन कराने के लिए जाते हो, सर्जरी कराने के लिए जाते हो, आप डॉक्टर को पूछिए और क्वेश्चन कीजिए आप कि आप जब लेप्रोस्कोपी करते हो तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, आगे मेरा कभी भी सीस्ट नहीं होएगा? आपको डॉक्टर सीधा बोलेगा कि हाँ आपको सीस्ट होएगा, 2-3 महीने के बाद आपको दोबारा सीस्ट होएगा। लेकिन एक क्वेश्चन काफी पेशेंट लोग नहीं करते हैं, ये चीज करना चाहिए और समझने की जरूरत है।
जैसे आपने बताया कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कुछ वुमेन्स है जो स्ट्रेस के कारण और उसके कारण मां नहीं बन पाती हैं या उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे सर IVF के अलावा आप जो ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या उससे इनफर्टिलिटी रिकवर हो सकती है, क्या उससे कंसीव किया जा सकता है?
जी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले सिम्टम्स देखता हूँ। सिम्टम्स देखने के बाद मैं हॉर्मोन्स का लेवल चेक करता हूँ। हॉर्मोन्स का लेवल चेक करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी ट्रीटमेंट से कोई भी फीमेल को बेनिफिट होता है, तब मैं वो फीमेल को ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करता हूँ। और जब मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ तो मैं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि इसके लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में कोई भी तरह का दवाई नहीं है। मेरा जो ट्रीटमेंट है, मैं इसके लिए पिछले 7 साल से, मतलब 2007 से 2014 तक मैंने इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इस तरह का प्रॉब्लम काफ़ी लेडीज़ को है, इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जब मैं 2007 में जब चालू किया था तब मेरे को मालूम था कि इस तरह का प्रॉब्लम यूएसए के अंदर 10 मिलियन लेडीज़ को है, को ये सफ़र हो रहा है, और इंडिया के अंदर भी है और सब वर्ल्ड के अंदर सभी जगह पर है ये प्रॉब्लम, राइट? तो जब मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, उसके बाद ही मैंने मेरा इन्वेंशन चालू किया। मैंने कहा इतने सारे लेडीज लोग सफ़र कर रहे हैं तो मेरे को कुछ करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है ये दुनिया के अंदर। तो मैंने मेरा पूरा 7 साल निकाला रिसर्च करने के अंदर। 7 साल के बाद 2014 में मैं आउट ऑफ इंडिया था, मैं इंडिया वापस आया स्पेशली इसका क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए। और 2014 के अंदर मैंने जब क्लिनिकल ट्रायल्स किया तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, जो मैंने ट्रीटमेंट और जो मैंने सोचा हुआ है उससे मेरे को सक्सेस मिल रहा है। तो मैं तो ऐसा ही बताऊंगा सभी लोगों के, इट्स अ गॉड गिफ्ट, के ऊपर वाले ने मेरे को गिफ्ट दिया है फीमेल को हेल्प करने के लिए। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं कैसे ट्रीटमेंट करता हूँ और मैं किस पेशेंट को ट्रीटमेंट देता हूँ।
जी जरूर,
राइट। सबसे पहले मैं सिम्टम्स देखूंगा, सिम्टम्स देखने के बाद आपका हॉर्मोन्स का लेवल चेक करूंगा। हॉर्मोन्स का लेवल चेक करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ, मेरी ट्रीटमेंट से हो जाएगा, तभी मैं ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई पेशेंट को लो ओवरियन रिजर्व है और किसी का, तो सबसे पहले तो मेरा नेगेटिव चीज ही मैं बताना चाहता हूँ सबको, अगर किसी का एम लेवल 0.4 है तो मेरी ट्रीटमेंट में से काम नहीं करती है बेसिकली। समझ गए? अगर आपका एम लेवल 0.4 है और उसके ऊपर है तो मेरी ट्रीटमेंट से आपका जो 0.4, 0.5 या 0.7 या 1.2 जो भी अमाउंट है उसको 2.19 पे लेके जा सकते हैं। और किसी का एमएच लेवल काफ़ी हाई है उसको भी हमारा ट्रीटमेंट काम करता है। तो ये जो रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं पेशेंट को देता हूँ ट्रीटमेंट। अगर कोई मेरे पास आता है कि मेरा एमएच लेवल 0.1 है तो मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी को होप देना अच्छा नहीं लगता है, प्रॉमिस करना अच्छा नहीं लगता है या कमिटमेंट करना अच्छा नहीं लगता है। और हर एक इंसान का जो पैसा है वो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, और उसका टाइम भी है, उसका मेहनत भी है, तो उसमें मेरा कोई राइट नहीं बनता है। हाँ, एक बार रिपोर्ट करने के बाद मैं मेरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ। और आपको अगर जानना होगा कि हाँ, मैं ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करता हूँ, वो कैसा ट्रीटमेंट होता है, समझ गए आप? तो जो मेरा ट्रीटमेंट है, मैं नेचुरल मिनरल यूज़ करता हूँ जो अर्थ मिनरल्स हैं।
Okay.
उसका जो फॉर्मुलेशन किया हुआ है अर्थ मिनरल का, हर एक ट्रीटमेंट के अंदर 0.5 किलो मिनरल्स मीन्स 500 ग्राम्स मिनरल हम लोग यूज़ करते हैं। वो 500 ग्राम्स के मिनरल्स के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। वो जो पेस्ट है वो अंडर बस से लेके घुटन तक बॉडी के चारों तरफ अप्लाई करके उसके ऊपर 3 कॉटन इलास्टिकेटेड बैंडेज से कवर करके पेशेंट को 1 घंटे तक सो जाना होता है। 1 घंटे के बाद उनको अनकवर करके उनको शावर ले लेना होता है। ये जो नेचुरल मिनरल्स जो है जो हमने अप्लाई किया वो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है और हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है एक्सटर्नली। टॉपिकल ट्रीटमेंट है जो आपको कुछ खाने पीने का नहीं, खाली अप्लाई ही करना है, और ये ट्रीटमेंट से आपका हॉर्मोन्स बैलेंस होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली 2 मंथ्स तक लगता है मिनिमम, सभी पेशेंट को मिनिमम 16 ट्रीटमेंट करना पड़ता है और 2 ट्रीटमेंट के बीच में 2 दिन का गैप रखना पड़ता है। मतलब एवरी थर्ड डे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो 16 ट्रीटमेंट करने के लिए तकरीबन 48 डेज का टाइम जाता है। और जब पेशेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इन बिटवीन 4-5 दिन, तब वो ट्रीटमेंट नहीं करने का होता है। तो इनिशियली जो 16 साइकिल का जो है वो तकरीबन 55 डेज के अंदर या समझ लो 2 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाता है। तो 16 ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर से AMH का टेस्ट करवाना करते हैं, क्योंकि पेशेंट को भी मालूम पड़ना चाहिए कि आप उनका हॉर्मोन्स क्या था ट्रीटमेंट चालू करने से पहले और ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद कितना हॉर्मोन्स हुआ उनका नॉर्मल। अगर पेशेंट का पूरा सिम्टम्स भी चला जाता है कंप्लीट, आप सोचोगे अगर उनको कोई भी तरह का सिम्टम्स नहीं है फिर भी मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आप हॉर्मोन्स का टेस्ट करवाइए, AMH का टेस्ट हम लोग रिपीट करवा लेते हैं, क्योंकि AMH का रिपोर्ट देखने के बाद पेशेंट को 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो अमाउंट स्पेंड किया हुआ है उसके वर्थ उनको रिजल्ट्स मिला कि नहीं मिला।
जी, जैसे आप ये जो ट्रीटमेंट देते हैं कुछ 48 डेज का, तो इसमें मींस कितने टाइम में रिजल्ट दिखने लग जाता है?
अगर किसी का AMH लेवल 0.6 या 1.2 और समथिंग है तो उनको नॉर्मली 16 ट्रीटमेंट के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। अगर किसी का AMH लेवल अराउंड 10.5 जितना है, हाई है, उसको 20-16 ट्रीटमेंट में मिल जाता है। लेकिन अगर किसी का AMH लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर किसी का AMH लेवल 15 है, 16 है, तो उनको 32 ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली आपका जो AMH लेवल कितना डिस्टर्ब है और कितना वैल्यू है अप एंड डाउन, उसके हिसाब से मैं टेंटेटिवली अप्रोक्सीमेटली मैं सभी पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको कितना ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी।
ओके, और जैसे जितने भी लोग आते हैं 100% रिजल्ट सभी को मिलते हैं?
देखो, मैं बेसिकली कर्म में बिलीव करने वाला हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे को ये जो ट्रीटमेंट है गॉड गिफ्ट जैसा है मेरे लिए, तो मैं जब कर्म में बिलीव करता हूँ इसीलिए मैं रिपोर्ट करवाता हूँ, और रिपोर्ट कराने के बाद अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी ट्रीटमेंट से हो जाएगा तभी मैं किसी पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ। अगर बाय चांस अगर मेरी ट्रीटमेंट से किसी का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है, और टच वुड पिछले 7 साल के अंदर एक भी पेशेंट ऐसा नहीं हुआ कि जिसको रिजल्ट नहीं मिला है, अगर बाय चांस अगर किसी का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो पैसा मेरे लिए काम का नहीं है। बेसिकली उनका जो हार्ड अर्न जो मेहनत का पैसा हुआ है वो मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है। तो मैं पेशेंट को ये भी बता देता हूँ कि हाँ अगर आपको मेरी ट्रीटमेंट से अगर बेनिफिट नहीं हुआ या रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं पैसा नहीं लेता हूँ, वापस कर देता हूँ पैसा।
ओके, तो फिर आप उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए?
नॉर्मली अभी 7 साल के अंदर जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कभी भी ऐसा चीज नहीं हुआ कि मेरे से नहीं हुआ है। हाँ, मैं जब AMH लेवल जैसे मैंने बोला कि किसी का AMH लेवल 0.2 है, 0.3 है, तो मैं उनको बोल देता हूँ हाँ आपके लिए IVF ट्रीटमेंट करना चाहिए, आप IVF के लिए कोशिश कीजिए, IUI के लिए कोशिश कीजिए। मैं उन पेशेंट को बता देता हूँ क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है तो मैं ट्रीटमेंट देने का मतलब ही नहीं रहता है। वो पेशेंट को जो चाहिए वो उसके लिए गाइड करना अच्छी बात है, जो मैं समझता हूँ।
ओके सर, एक चीज और है, आती है कि जैसे इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ वुमेन्स को ही होती है, मेल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए क्या दोनों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं?
आपने जो अच्छा क्वेश्चन किया कि मेल इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, हाँ डेफिनेटली होता है, और दोनों का रीजन एक ही है। जैसे मैंने आपको बोला कि टेंशन और स्ट्रेस करने की वजह से होता है। जब मेल पेशेंट को भी टेंशन और स्ट्रेस होता है तब उनका स्पर्म काउंट के अंदर प्रॉब्लम आता है।
ओके,
सेकंड चीज उनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होने की वजह से भी स्पर्म काउंट में अंदर प्रॉब्लम आता है, और उनको भी गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि मेल को पेशेंट को गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं होता है, उनको भी होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन मेल पेशेंट के लिए जिसको स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है उसके अंदर अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है, वो जो मेडिसिन है उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है, काफ़ी अच्छा मैंने रिजल्ट्स भी देखा हुआ है। मेल इनफर्टिलिटी का मेडिसिन आयुर्वेदिक के अंदर काफ़ी अच्छा है, तो वो पेशेंट को वो चीज़ यूज़ करना चाहिए।
ओके, तो ये भी आप प्रोवाइड करते हैं?
नहीं, मैं मेल इनफर्टिलिटी का नहीं करता हूँ, मैं खाली फीमेल्स इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी को मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होते है तो हाँ मेरे पास मेरे ग्रुप में अराउंड 42 डॉक्टर्स है जो हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा क्लिनिक्स है डिफरेंट डिफरेंट सिटी के अंदर, और हमारा क्लिनिक दुबई, शारजा, नेपाल, जकार्ता और लंदन में भी है। मेरे साथ जो कलीग्स है मेल इनफर्टिलिटी के भी वो एक्सपर्ट है, तो हम लोग उनका सजेशन लेके मेल इनफर्टिलिटी पेशेंट को भी हम लोग गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
जैसे इन जो इनफर्टिलिटी है, मेल की क्या एज होती है इनफर्टिलिटी?
हाँ, मेल की एज जो आप बात कर रहे हो कि मेल को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कौन सी एज में होता है, राइट? ज्यादातर मैंने देखा हुआ है 45 प्लस के ऊपर एज के अंदर ही होता है। हाँ, और अगर यंग एज में भी जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि उनको टेंशन और स्ट्रेस की वजह से या शुगर का प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है।
ओके, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या इसके साइंस कैसे पता चलेंगे?
सबसे पहले उनका साइन है जो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, उनको इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है उससे मालूम पड़ता है। सेकंड थिंग्स, जो मैरिज होने के बाद भी ये मालूम पड़ जाता है कि जब वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं तभी भी ये चीज़ मालूम पड़ता है, और काफ़ी वाइफ जो है वो उनको बता देते हैं कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि लेडीज़ का हॉर्मोन्स एकदम बराबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका AMH, TSH, फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन, एवरीथिंग इज़ फाइन। जब वो सब चीज़ बराबर होता है तभी हम लोग देखते हैं कि हाँ मेल पेशेंट के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, और जब हम लोग मेल पेशेंट को देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि हाँ हस्बैंड का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ये चीज़ जब हम लोग फीमेल पेशेंट को जब मिलते हैं और जब हम उनका रिपोर्ट देखते हैं उसी वक्त हमको मालूम पड़ जाता है कि हाँ किसको प्रॉब्लम है, मेल को पेशेंट को प्रॉब्लम है या फीमेल को प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादातर आप देखा जाओगे कि अगर मैरिड कपल है और कंसीव नहीं होता है तो सभी डॉक्टर क्या करते हैं बेसिकली दोनों का रिपोर्ट करवा लेते हैं, और दोनों का रिपोर्ट कराने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। आप पहले लेडीज़ का प्रॉब्लम चेक कीजिए, उनका हॉर्मोन्स बराबर है कि नहीं वो चेक कर दीजिए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम लेडीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर जो लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तभी मेल का सीमेंस एनालिसिस करवाना चाहिए, उनका स्पर्म काउंट मोटिलिटी क्या है क्या नहीं है वो चेक करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मेल पेशेंट को दवाई अवेलेबल है जैसे मैंने बोला आपको आयुर्वेदा के अंदर अच्छा मेडिसिन से उनको वो सजेस्ट करना चाहिए सभी लोग को।
ओके मीन्स ये चीज भी मैटर करती है कि हस्बैंड अगर उसकी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है।
हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म काउंट नहीं है और स्पर्म काउंट कम बन रहा है तभी भी तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ना
इस तरह से आप भी वुमेन्स के लिए
जी।
काम करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, तो आप अगर एक मैसेज देना चाहें उनके लिए तो वो क्या होगा?
और सभी वुमेन्स को मैं एक ही चीज़ बताने की कोशिश है मेरी और आपको अवेयर करना चाहता हूँ, और आपके अच्छे के लिए मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि देखिए ये लाइफ है, लाइफ के अंदर टेंशन और स्ट्रेस तो आती ही रहती है। आज सबकी लाइफ के अंदर टेंशन और स्ट्रेस है, मेरी लाइफ के अंदर भी टेंशन और स्ट्रेस है, समझ गए। और टेंशन और स्ट्रेस करने से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है, आपका हेल्थ ही खराब होने वाला है। अगर आपकी लाइफ के अंदर भी कोई भी तरह का टेंशन और स्ट्रेस है तो प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो प्रॉब्लम आप किसी और के साथ शेयर कीजिए, आपकी सब चीज़ आप किसी और एक इंसान से बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम। आप अकेले अकेले सोचते रहोगे आपका हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होने वाला ही है, उसमें नो डाउट, और आप सोचते होगे कि मेरे को क्यों हुआ। तो लाइफ ऊपर वाले ने जो दिया हुआ है उसको खुशी से एंजॉय करने के लिए सीखिए, ऑलवेज ट्राई टू स्माइल, ऑलवेज ट्राई टू लाफ एंड एंजॉय योर लाइफ। इतना
जी
आप सब करोगे तो आपको कभी भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है फिर भी आप ऐसा सोचो कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट थिंक पॉजिटिव, आप
यस
पॉजिटिव थिंकिंग ही करते रहो और आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं खाली आपको एक एग्जांपल देता हूँ जाते जाते, जो पिछले साल मुंबई की एक पेशेंट थी उसको प्रॉब्लम था PCOS का, और मैंने उनको खाली इतना ही समझाया था ट्रीटमेंट देने से पहले कि आपको ऑलवेज स्माइल करना है, डोंट बी इन टेंशन, डोंट बी इन स्ट्रेस, आप एंजॉय करो लाइफ। और समहाउ उसको कुछ रीजन की वजह से 1 साल तक उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया। 1 साल के बाद जब मेरे पास आई और मेरे को बोला कि सर आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया था मेरे को मैंने किया नहीं है ट्रीटमेंट, मैंने कहा कोई बात नहीं आपने नहीं ट्रीटमेंट किया हुआ है तो हम लोग फिर से चालू कर लेते और चेक कर लेते हैं। जब मैंने उनका हॉर्मोन्स दोबारा चेक किया तब वो पाया गया कि उनका हॉर्मोन्स कम्प्लीटली बैलेंस अपने आप हो गया। जब मैंने उनको बोला कि आपका हॉर्मोन्स कैसे बैलेंस हो गया, बोलते हैं सर मैंने कोई भी तरह का दवाई नहीं खाया है, मैंने ना आयुर्वेदिक दवाई लिया है, ना होम्योपैथी दवाई लिया है, ना एलोपैथी दवाई लिया है, लेकिन सर आपने जो मेरे को बोला था खुश रहने का मैंने खाली खुश रहने की कोशिश ही की है, मैंने कोई भी तरह का टेंशन और स्ट्रेस मेरे दिमाग में से निकाल दिया था। तो आप सोच सकते कि वो जो लड़की जो है उसने 1 साल के अंदर पॉजिटिव थॉट करने से ही बिना
जी
ट्रीटमेंट उनका हॉर्मोन्स बैलेंस हो गया,
जी
समझ गए आप। तो
जी
यही
सर
एक चीज है जो आप लोग को सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप चीज ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियरली, इसके लिए फीमेल का प्रॉब्लम के लिए या PCOS, PCOD और फर्टिलिटी के लिए ये दुनिया के अंदर कोई भी तरह का दवाई एलोपैथिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में है नहीं। आप जब डॉक्टर के पास जाओगे आपका हॉर्मोन्स का रिपोर्ट एक ही बार करवाएगा, दोबारा आपका रिपोर्ट होएगा नहीं जब तक आप डॉक्टर चेंज नहीं करोगे, आपका सोनोग्राफी ही होता रहेगा। तो मैं तो आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप दवाई से दूर रहिए, आप पॉजिटिव रहिए।
जी जी सर, और सबसे इसका मेन जो टूल है वो है मेडिटेशन, राइट?
मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आप डाइवर्ट कीजिए माइंड, फ्रेंड सर्कल्स के पास बात कीजिए, एंजॉय द लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू स्माइल एंड ऑलवेज लाफ।
यस, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और हमारे सारे लिसनर्स को इतना डीप इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच।
नो, इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीथिंग, एंड इफ हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट यू कैन गेट बैक टू अस, वी विल कम बैक अगेन। हम लोग आपको आपका आंसर, अगर आपको कोई भी तरह का आंसर है क्वेश्चन से ये सुनने के बाद, आप डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन पूछिए।
फेसबुक का पेज का लिंक सर का शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहां पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
और दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कंसल्टेशन का कोई भी चार्ज नहीं करता हूं। मैं किसी के कोई भी पेशेंट, किधर का भी पेशेंट है, मैं 45 मिनट्स भी बात करूंगा आपके साथ, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा आप मेरे को पे करके बात कीजिए।
जी थैंक यू,
ये सर्विस जो है मेरी तरफ से फ्री में सर्विस है, मैं सबको हेल्प करने की कोशिश करता हूं, मैं सबको राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं, और आपको कोई भी तरह का क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो आप मेरी फेसबुक के अंदर कमेंट्स कीजिए या इनबॉक्स कीजिए, तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट हो जाएगा और आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी तरफ से आप सबको मिलेगा। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्टली बता दीजिए कि सर मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या मेरे पास ये प्रॉब्लम है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैं हर फीमेल्स को मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से।
जी थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे शो पे बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल।
थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं मैं।
थैंक यू सर, जी सर,
गॉड ब्लेस यू।
जी थैंक यू सर। सो आज हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और स्पॉटिफाई पे रिव्यू दे सकते हैं हमारे पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल, जियो सावन, गाना, इन सब पे अवेलेबल है। शेयर करना ना भूलें, आप अगर ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत लोगों की हेल्प होगी। सो शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। यहाँ सिर्फ डॉक्टर राजेश सोनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, फिर बाकी वुमेन्स के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है, वो सारी चीजें सुने और उसके बाद ही डिसीजन लें।